आज है 6 जुलाई दिन बृहस्पतिवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। इजराइल यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खैफा में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, पर फलस्तीनी इलाकों में न जाने का क्या असर था?
लोगों का ये कहना था कि हर देश को, हर राष्ट्र को इस बात का अधिकार है कि वो फैसला करे कि वो किसके साथ दोस्ती रखना चाहता है।
सिक्किम सेक्टर में चीन भारत तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पर संशय।
विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग जो चीन के प्रेसिडेंट है, उनकी मुलाकात जो होने वाली थी उसका कोई माने नहीं रखता है।
अजीत कुमार ज्योति बने देश के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त। आज होगी इस पर रिपोर्ट और आपकी राय। क्रिकेट भी होगा, लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। इसराइल की यात्रा पर गए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के आखिरी दिन आज उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए थे। इसराइल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी के हैम्बर्ग जा रहे हैं, जहां वे G20 देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग से मुलाकात की अटकलों के बीच समाचार एजेंसी PTI ने चीन के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि हैम्बर्ग में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत के हिसाब से माहौल सही नहीं है। ये खबर ऐसे समय आई है जब भारत और चीन के दरमियान सीमा पर तनाव बना हुआ है। G20 देशों के नेताओं की शुक्रवार को होने वाली बैठक के मद्देनज़र जर्मनी के अधिकारियों ने हैम्बर्ग में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। इस बात की प्रबल आशंका है कि वैश्विक असमानता, व्यापार के भेदभावपूर्ण तरीके और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर हजारों लोग इस बैठक के दौरान विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। पोलैंड की यात्रा पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान पश्चिमी सभ्यता और मूल्यों को बचाने का आह्वान किया है। पोलैंड की राजधानी वारसा में उल्लासित भीड़ को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा,
We urge Russia to cease its destabilizing activities in Ukraine.
हम रूस से कहते हैं कि वो यूक्रेन और बाकी जगहों पर अस्थिरता पैदा करने वाली अपनी गतिविधियों को बंद कर दे। हम रूस से कहते हैं कि वो सीरिया और ईरान का समर्थन ना करे, बल्कि साझा शत्रुओं के खिलाफ सभ्यता की रक्षा के लिए जिम्मेदार राष्ट्रों के समुदाय में शामिल हो जाए। ये थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रहे बुरहान वानी की 8 जुलाई को पहली बरसी से पहले पुलिस ने कश्मीर में आज रात 10 बजे से सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक अगले आदेश तक ये पाबंदी जारी रहेगी। जापान के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। बाढ़ की वजह से लगभग 4 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। मेरी बेटी और बेटा अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें बाढ़ के पानी से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाएगा। हमारी कार पानी में फंसी हुई है और चल नहीं सकती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बाढ़ इतनी भीषण होगी। ये थे दक्षिणी जापान में बाढ़ में फंसी एक महिला के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। हांगकांग में कस्टम्स अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने बड़ी संख्या में हाथी दांत बरामद किए हैं, जिनका कुल वजन लगभग 7000 किलोग्राम है। हांगकांग में इतनी बड़ी मात्रा में हाथी दांत तस्करी का ये पहला मामला है। हाथी के ये दांत मलेशिया से आए एक जहाज से बरामद किए गए हैं। इस मामले में कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। लुप्त हो रहे जीव जंतुओं की तस्करी के हिसाब से हांगकांग को एक बड़ा कारोबारी केंद्र माना जाता है। भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक के एक मंदिर में 2 कथित समलैंगिक महिलाओं की खबर आने के बाद उन महिलाओं का कहना है कि वो आपस में बहनें हैं जो घरेलू हिंसा से बचने के लिए भाग रही हैं। इन महिलाओं के वकील के मुताबिक इनमें से एक महिला को अपने घर से इसलिए भागना पड़ा क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी। इस वजह से उनकी नौकरी भी चली गई है। BBC समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं राजेश जोशी। आप इस कार्यक्रम को फेसबुक और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन की इसराइल यात्रा के आखिरी दिन खैफा जाकर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पहले विश्व युद्ध के दौरान 1918 में खैफा युद्ध के दौरान 44 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी। मोदी की इस यात्रा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसराइल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री वो हैं। 25 साल पहले भारत और इसराइल के कूटनीतिक संबंध भी नहीं थे, मगर तब से परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी हैं। मैंने कुछ ही देर पहले तेल अवीव में वरिष्ठ पत्रकार हरिंद्र मिश्रा से बात की और पूछा कि तीसरे दिन मोदी ने क्या किया।
आज सुबह हाइफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी थे। दोनों ही नेताओं ने वहां पर हाइफा में एक मेमोरियल है, भारतीय सैनिकों का मेमोरियल है। तकरीबन 44 भारतीय सैनिक जो हैं वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वहां पर युद्ध के दौरान वो वहां मारे गए थे और उनके लिए वहां एक स्मारक बना हुआ है। खास करके मेजर दलपत सिंह जो हैं उनको लेकर के वहां पर काफी चर्चा भी रहती है उस शहर में, और माना ये जाता है कि उनके नेतृत्व में वहां पर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद खैफा जो है खैफा शहर वो लिबरेट किया गया। तो दोनों नेताओं ने वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की और एक प्लेक जो है उसका अभी इनॉगरेशन किया, जिस पर कि दलपत सिंह और उनके जो सैनिक हैं उनके कुर्बानी को के बारे में जानकारी दी गई।
और इससे पहले कल दोनों नेताओं ने 7 समझौतों पर दस्तखत किए, चाहे वो खेती हो, अंतरिक्ष हो या पानी की बचत जैसे मसलों पर। क्या फौजी सिलसिले में या इंटेलिजेंस शेयरिंग के सिलसिले में कोई बातचीत छन के बाहर आ पाई है?
देखिए, कोशिश ये रही है इस दौरे के दौरान दोनों ही पक्षों के तरफ से कि जहां तक सुरक्षा संबंधों का सवाल है तो उसका ज्यादा जिक्र न किया जाए, उसके बारे में ज्यादा चर्चा न की जाए। यहां पर कुछ अधिकारियों ने यहां तक भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल नहीं आना पड़ेगा, सुरक्षा संबंधी जो ताल्लुकात हैं जो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उसको मजबूत करने के लिए, क्योंकि वो संबंध पहले से ही मजबूत हैं। अगर देखा जाए तो पिछले 2 महीनों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने के पहले $2.63 बिलियन का समझौता दोनों देशों के बीच हो चुका है। तो इस तरह के समझौते पहले भी होते रहे हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि औसतन $1 बिलियन का दोनों देशों के बीच जो है वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट होता है, खास करके भारत जो है वो $1 बिलियन का हथियार इसराइल से खरीदता है।
लेकिन फलस्तीनी लोगों का क्या नजरिया था, जिनके बारे में महात्मा गांधी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उन तमाम लोगों ने फलस्तीनियों के संघर्ष में उनकी मदद देने की बात कही थी, और 25 साल पहले तक तो इसराइल के साथ ताल्लुकात ही नहीं थे भारत के। अब भारत के प्रधानमंत्री का फलस्तीनी इलाकों में ना जाना, वहां से किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है?
लोगों का ये कहना था कि हर देश को, हर राष्ट्र को इस बात का अधिकार है कि वो फैसला करे कि वो किसके साथ दोस्ती रखना चाहता है। जब तक भारत जो है कोई ऐसा काम नहीं करता, या भारत और इसराइल के संबंध से भारत और फलस्तीन के संबंधों पर बुरा असर नहीं पड़ता है, तब तक लोगों में इसको लेकर के कोई नाराजगी नहीं मुझे नजर आई।
ये थे तेल अवीव से पत्रकार हरिंदर मिश्रा। और इसराइल के बाद चर्चा भारत चीन तनाव की। ऐसे संकेत आ रहे हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जर्मनी में इस हफ्ते G20 शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाली मुलाकात शायद अब न हो। दोनों देशों के बीच सिक्किम सेक्टर में लगभग 3 हफ्ते से चल रहे तनाव को देखते हुए चीनी अधिकारियों ने कहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात का ये उचित समय नहीं है। चीन के सरकारी मीडिया ने भी भारत की आलोचना तेज कर दी है। मसलन चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सिक्किम के मुद्दे पर संपादकीय लिखा है और कहा है कि चीन को सिक्किम के प्रति अपने नजरिए पर फिर से विचार करना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने कुछ ही देर पहले फोन किया बीजिंग में वरिष्ठ पत्रकार शैबल दास गुप्ता से और पूछा कि चीन में आज क्या हलचल रही।
आज चीन के विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग जो चीन के प्रेसिडेंट है उनकी मुलाकात जो होने वाली थी जर्मनी में G20 के कंटेक्स्ट में, तो उसका कोई माने नहीं रखता है कि अगर भारत और चीन के बीच में अगर पॉलिटिकल ट्रस्ट विश्वास ही कम हो गया है डोकलाम के घटना के बाद, तो उस मीटिंग का कोई माने नहीं रखता, ये उन्होंने बताया। मतलब कि मोरलेस ये बता रहा है कि चीन ये मीटिंग नहीं चाहती।
अच्छा, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि जब दोनों नेता जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में मिलेंगे तो ये जो सीमा का तनाव है ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, इसको सुलझा लिया जाएगा। अब क्या माना जाए, अगर ये दोनों नेता नहीं मिलते हैं, अगर अंततः ये होता है कि नहीं मुलाकात नहीं होनी है, तब फिर चीन किस तरह की तैयारियां कर रहा है या किस तरह की हलचल वहां दिख रही है?
सबसे बड़ी बात चीन के लिए आज ये है कि दुनिया के सामने जो चीन और शी जिनपिंग उभर के आए हैं एज अ वर्ल्ड स्टेट्समैन, जहां ट्रंप को भी के भी आगे चले गए हैं कि क्लाइमेट चेंज सारे विषय में उनकी उदारता वो बता रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के विषय में दुनिया की वाह वाह हो रही है। उस वक्त ये बात अगर चली जाए दुनिया के सामने कि भूटान जैसे छोटे राज्य से भी आप जमीन का टुकड़ा खींचवाने की कोशिश निकलवाने की कोशिश कर रहे हो तो वो एक बड़ी बेइज्जती की वाली बात होगी, और खास करके नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सिग्नल जाएगा कि भाई चीन पे कितना भरोसा कर रहे। तो इसलिए चीन चिंतित तो है, इसी कारण से मीडिया वॉर भी चल रहा है। दूसरा ये है कि तिब्बत में चीनी सेना ने एक मिलिट्री ड्रिल शुरू किया है 5,500 मीटर की ऊंचाई पर, और ये ड्रिल में उन्होंने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही नए प्रकार के टैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले नहीं दिखे गए। ये भी एक तरीका है भारत पे दबाव बढ़ाने का, कि भाई देखो आप युद्ध की बात कर रहे हैं तो समझ लो मेरे पास ऐसा, हमारे पास ऐसे टैंक है।
ये तो बात अपनी जगह रही, लेकिन जो सरकारी मीडिया है जैसे ग्लोबल टाइम्स, अभी हमने सुना कि ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि सिक्किम के मुद्दे को चीन को फिर उठाना चाहिए, ये पेच क्या है?
ग्लोबल टाइम्स ने आज ये बात कही कि हम सिक्किम की आजादी का मुद्दा उठाएंगे क्योंकि भारत ने जबरदस्ती सिक्किम को कब्जा किया था। अब 2003 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो वो बीजिंग आए थे और ये करार हुआ था कि भारत तिब्बत को रिकॉग्नाइज करती है, और वो इस बात को रिकॉग्नाइज करती है चीन के भाई सिक्किम भारत का हिस्सा है, तो ये तो करार हो चुका है। उसके बावजूद अगर वो उखेड़ के बाद निकालना चाहते हैं तो वो निकालेंगे, लेकिन उसको सुनेगा कौन?
ये थे बीजिंग से वरिष्ठ पत्रकार शाइबल दास गुप्ता, ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
बीबीसी इंडिया बोल। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव जारी। तनाव दूर करने के लिए कहा जा रहा है कोशिशें भी जारी, लेकिन जमीनी हालात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे। इस बीच भारत और चीन दोनों तरफ से तल्ख बयानबाजी भी हो रही है। ऐसे में कैसे सुधर सकते हैं भारत और चीन के संबंध, यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 8 जुलाई को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
आइए अब एक नजर डालते हैं पश्चिम बंगाल पर, जहां पिछले रविवार को उत्तर 24 परगना जिले में मुसलमानों ने हिंसक प्रदर्शन किए। ये प्रदर्शन सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक और भड़काऊ तस्वीर प्रसारित किए जाने के बाद हुए, पर मामला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के बीच तू तू मैं मैं तक जा पहुंचा। ममता बनर्जी ने त्रिपाठी पर फोन पर बेइज्जत करने का आरोप लगाया था, पर त्रिपाठी ने इससे इनकार किया। आज केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की। लीजिए सुनते हैं कलकत्ता से अमिताभ भट्टशाली की रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल की उत्तर 24 परगना जिले के बादुरिया, बशीरहाट, देगंगा और स्वरूपनगर इलाके में सोमवार से जो सांप्रदायिक तनाव चल रहा है उसका शुरुआत हुआ था एक फेसबुक पोस्ट को लेकर। मुसलमानों के लिए पवित्र काबा की एक फोटोशॉप किया हुआ तस्वीर फेसबुक पे डाला था 11वीं कक्षा के एक छात्र ने। उसको सोमवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, पर तनाव और हंगामे बढ़ता ही चला गया था अगले दो दिन तक। अब राज्य सरकार चाह रही है कि बुनियादी स्तर पे ऐसे निगरानी का बंदोबस्त किया जाए ताकि सांप्रदायिक तनाव पैदा ही ना हो। सरकार की इस प्रयास का घोषणा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की है।
बूथे बूथे लोकल थाना गुलो छात्रों निये युवाओं निये इमाम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा कमेटी से शुरू करे।
ममता बनर्जी बोल रही थी कि हरेक चुनावी बूथ पर छात्र, युवा, सारे धर्म के प्रतिनिधि, क्लब, सभी को लेकर शांति वाहिनी बनाया जाएगा। राज्य में 60,000 बूथ है, हरेक में 15 दिनों के अंदर स्थानीय प्रशासन ऐसे शांति वाहिनियों के गठन संपन्न करेगा। इस शांति वाहिनियों का काम होगा अपने इलाके में शांति बनाए रखना और निगरानी रखना। प्रशासन हर तरह की मदद करेगा, ममता बनर्जी के शब्द। हालांकि विपक्षी दलों का कहना है अपनी प्रशासन का असफलता को छुपाने के लिए ममता बनर्जी ऐसे शांति वाहिनियों का गठन करने का घोषणा की है। सीपीआईएम की केंद्र कमेटी के सदस्य मोहम्मद सलीम।
ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ऐसे जो घोषणा करती हैं वो घोषणा ही रहता है, उसको कार्य रूप नहीं देती। और आज जरूरत क्या है, बशीरहाट, बादुरिया या बनगांव सब डिवीजन, बरासत सब डिवीजन में, हसनाबाद में जब बढ़ गया मामला, तो पुलिस सेना अर्धसेना बल उनको भेज करके उनको रोकथाम करना। पिछले चार रोज से वो ये काम नहीं किए हैं और आज वो जनता के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ रही हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का आरोप है वर्तमान सत्तारूढ़ दल में ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने सांप्रदायिक भाषणबाजी करते आए हैं। ऐसे लोग अगर शांति वाहिनियों में रहे तो उसका कोई मायने ही नहीं रहेगा। आरएसएस के दक्षिण बंगाल के प्रांत प्रचारक जिष्णु बासु।
पश्चिम बंगाल के लोग हाथ रहे ये सुनकर, ये जो कमेटी उन्होंने प्रपोज किए है इसका दायित्व तो किसको देंगे? जो खगड़ाघाट विस्फोट के बाद वर्धमान में ये रूढ़वादी रैली आयोजन किए थे, जो आज मंत्री है उनको देंगे? या सिमी जो फाउंडर प्रेसिडेंट है जिनको उन्होंने सांसद बनाया तो उनको देंगे? या जो मंत्री बोलते हैं ये मेरे मामले में आए एंड आई विल शो यू द मिनी पाकिस्तान, किसको देंगे?
जिस इलाके में पिछले कई दिनों से सांप्रदायिक तनाव चल रहा है वहीं रहते हैं राज्य के मुस्लिम संप्रदाय के एक नेता मोहम्मद कमरुज्जमान। मुख्यमंत्री की इस घोषणा को स्वागत करते हुए भी कमरुज्जमान का कहना है,
মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগটা অত্যন্ত শুভ উদ্যোগ। অনেক আগেই এই ধরনের উদ্যোগ নিলে ভালো হতো। যে অংশটা অত্যন্ত
কামরুজ্জামান বলে রয়েছে, এসে সিদ্ধান্ত পহলেই লে লেনা চাইয়ে থা। হর এক মজহব কে নেতা তো সাম্প্রদায়িক তনাও কম করনে কে লিয়ে হি কাম কর রহে হ্যায়, পর কুছ লোগ ধর্ম কে নাম পর এসে স্থিতি পয়দা কর রহে হ্যায়। সিরফ শান্তি বাহিনিও কা গঠন করনে সে হি নহি চলেগা, সাথ হি সাথ এসে তাকতো কো পকর কে সাজা দেনা চাইয়ে। মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কা শব্দ। इधर जिस इलाके से हंगामा का शुरुआत हुआ था उस बादुरिया में आज स्थिति सामान्य हो गया है, पर बसीरहाट इलाके में आज फिर से हंगामा हुआ है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों के हंगामे में भाग लेने का आरोप में जब पुलिस कुछ हिंदू नागरिकों को गिरफ्तार की तो पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प हुई। पुलिस के कई वाहनों को तोड़फोड़ किया गया और आग भी लगा दी गई।
ये थी अमिताभ भट्टाशाली की रिपोर्ट।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अचल कुमार ज्योति ने भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाल लिया है। वो जनवरी 2018 तक इस पद पर बने रहेंगे। ज्योति उस वक्त गुजरात के मुख्य सचिव थे जब नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे, मगर ज्योति की नियुक्ति विवादों से परे नहीं रही। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सिलसिले में सरकार से सवाल पूछे। सुनिए हमारे नए साथी मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।
पद संभालने के बाद ज्योति ने निष्पक्ष रहकर काम करने का भरोसा दिलाया। मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। साथ ही आयोग किसी भी मतदाता के पीछे न छूटने के अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। ये थे अचल कुमार ज्योति के शब्द, मगर ज्योति की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि केंद्रीय चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई कानून क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सवाल को ठीक बताते हुए फरवरी 2004 से मई 2005 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टीएस कृष्णमूर्ति ने बीबीसी से कहा कि पहले भी ये कानूनी सवाल उठाया जा चुका है।
इलेक्शन कमीशन में था ये सुझाव, मैंने भी खुद दे दिया कि ऐसा ही थोड़ा ट्रांसपेरेंट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट होना चाहिए। सो ऐसा सुझाव हम भी दिए हैं पहले, तो ये नया बात नई बात नहीं है। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, लेकिन इसके बारे में बहुत से आदमी सुझाव दिए हैं, बेटर सिस्टम ऑफ ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट होना चाहिए।
वहीं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और यूपीए सरकार में खेल मंत्री रहे डॉक्टर एमएस गिल भी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कानून बनाने की मांग करते हैं।
मैंने 17 साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया, हमने सब ने ध्यान से पढ़ा है, वो मैंने मसला उठाया था 17 साल पहले एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मेरा कहना बड़ा सिंपल था, मैंने उस वक्त कहा था कि अब समय आ गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथी कमिश्नरों की जो अपॉइंटमेंट है वो एक न्यूट्रल सिलेक्शन से हो, सरकार पे ना छोड़ी जाए।
चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति कैसे हो इसको लेकर इस मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण कहते हैं कि विपक्षी राय लिया जाना जरूरी है।
उसका चयन एक निष्पक्ष कमेटी के द्वारा होना चाहिए जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस जैसे लोग हों। और इसके बहुत सारे आयोग इसकी सिफारिश कर चुके हैं। एक लॉ कमीशन ने सिफारिश करी थी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमीशन ने सिफारिश करी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने सिफारिश करी थी। और इस तरह का प्रावधान सीबीआई के डायरेक्टर के नियुक्ति के लिए, उसमें भी चीफ जस्टिस लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं।
करीब दो महीने के बाद देश के नए मुख्य न्यायाधीश फिर से इस मामले की सुनवाई करेंगे। मोहम्मद शाहिद, बीबीसी दिल्ली।
और अब आपकी राय।
आपकी राय, आपकी राय में मैं हूं आपके साथ इंदु पांडे, और आज मेरे साथ हैं
मैं मुकेश शर्मा।
तो मुकेश जी, चिट्ठियों का सिलसिला शुरू करते हैं।
जरूर।
ये राहुल कुमार की चिट्ठी है भागलपुर यूनिवर्सिटी से। लिखते हैं कि एक मुद्दत से तेरी याद भी ना आई हमें, और हम भूल गए हैं तुझे ऐसा भी नहीं है।
वाह।
ये बात करते हैं बीबीसी की, क्योंकि इनके एग्जाम्स थे तो वो बहुत ज़्यादा बिजी थे, और अब फिर से उसी दीवानगी के साथ बीबीसी से जुड़ गए हैं और विवेचना की तारीफ करते हैं और निखिल रंजन को मिस करते हैं।
हाँ, निखिल हमारे साथ थे और अब उन्होंने कुछ समय पहले इस संगठन की जगह वो दूसरी जगह चले गए हैं, और हम सब अभी भी उन्हें याद करते हैं। आपको विवेचना कार्यक्रम हमारे बहुत सारे श्रोता तारीफ लगातार करते रहते हैं, अच्छा लगता है ये, और हमारी कोशिश, और ख़ासतौर पर रेहान जी जिस तरह से लगे रहते हैं उस कार्यक्रम को लगातार सोचने में, वो कोशिश हमेशा यही होती है कि श्रोताओं को पसंद आए।
और ये ईमेल है अमरीश यादव का। इन्होंने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू विद्यार्थियों की होने वाली अजीब सी परेशानियों के बारे में जो बीबीसी में लिखा गया, इस रिपोर्ट में लगाए गए तमाम इल्ज़ाम पहली नज़र में बिल्कुल बेहुदा और मनगढ़ंत नज़र आए इनको।
देखिए, ये जो बीबीसी ने ये एक श्रृंखला की थी, ये श्रृंखला दरअसल इस चीज़ की थी कि बहुसंख्यकों के बीच अल्पसंख्यक होना, और वो अल्पसंख्यक भाषाई आधार पर, या सिर्फ क्योंकि मजहब के आधार पर नहीं है, या जाति के आधार पर, या किसी भी आधार पर हो सकता है, उस श्रृंखला का एक हिस्सा था जिसमें वहाँ पर जो एक स्टूडेंट हैं उन्होंने लिखा था कि वो क्या महसूस करती हैं
जी।
वो क्या महसूस करती हैं उसको हमने फिर कसौटी पर भी कसने की कोशिश की थी, तो वो दोनों पक्ष सामने थे। ये सही बात है कि जो लोग संगठनों के साथ में AMU या BHU या JNU ऐसे विश्वविद्यालयों के साथ भी जुड़े रहे हैं, उनको दिल पे थोड़ा सा, हम सबको जिस संगठन के साथ जुड़े रहे हैं या संस्थान के साथ जुड़े रहे हैं, लगता ज़रूर है, पर हमारी कोशिश उसको संतुलित रखने की हमेशा रही है।
और ये ईमेल है सुमन सौरभ का। ये बीबीसी को 15 सालों से सुन रहे हैं, और इनकी शिकायत है कि बीबीसी अब कंजूस हो गया है, क्योंकि आपने पहले दो कार्यक्रम बंद कर दिए और फिर फैला उजियारा, दुनिया जहान, इन्हें भी बंद कर दिया है।
फैला उजियारा तो एक श्रृंखला के तौर पर प्रस्तुत हुआ था, और वो एक कुछ कड़ियों की श्रृंखला थी जो प्रस्तुत हुई। दुनिया जहान जहाँ तक है वो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है कार्यक्रम, कुछ समय के लिए अभी रोका गया है, लेकिन फिर से वो उसी जोश के साथ में आएगा। और ऐसा नहीं है, विवेचना अभी आता ही है, खेल का जो कार्यक्रम है वो आता है, और इसके अलावा हम नई नई चीज़ें लगातार ला रहे हैं, और हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि नई चीज़ों के साथ में हम आएँ और श्रोताओं को नए जोश के साथ अपने साथ जोड़े रखें।
और इनका एक निवेदन भी है कि जो कार्यक्रम है उनको कृपया दोहरा के ना सुनाया करें।
क्या है कि कई बार आप तो बहुत ही नियमित श्रोता हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं जो कई बार एक कार्यक्रम सुनते हैं, दूसरा किसी वजह से नहीं सुन पाए, तो वो हमारे जो अच्छी प्रस्तुतियाँ हैं उनसे वंचित न रह जाएँ, इस कारण से हम ऐसा करते हैं कई बार।
और ये पोस्टकार्ड आया है हमारे पास, ये हमारे बहुत ही रेगुलर श्रोता हैं, नागेंद्र कुमार कुशवाहा, पिपराही बाजार, जिला शिवहर, बिहार से
जी।
लिखते हैं कि दूसरी सभा में दिनभर के अंतर्गत साप्ताहिक कार्यक्रम कला समीक्षक यतीन्द्र मिश्र द्वारा प्रस्तुत संग संग गुनगुनाओगे के माध्यम से संगीतकार चित्रगुप्त के बनाए धुनों को फिल्मी गीतों के साथ हमने सुना, इनको बहुत अच्छा लगा।
इस कार्यक्रम की लगातार तारीफ आ रही है और हमें बहुत अच्छा लगा, और जैसा हम कहते ही हैं कि नई चीज़ें करते रहना, अपने श्रोताओं के लिए लाते रहना, ये हमारा एक प्रयास हमेशा रहता है, और हम ये उनको बता भी रहे हैं, जो कार्यक्रम की प्रस्तुतियाँ हैं वो लोगों को अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी बात है।
और कानपुर से ये पोस्टकार्ड भेजा है पंडित राम स्वरूप शर्मा ने। और दूसरा पोस्टकार्ड आया है हमारे पास विष्णु वर्मा ककोली से, लिखते हैं फैजाबाद उत्तर प्रदेश से, और इन दोनों ने एक ही बात लिखी है कि ये जो किसान आत्महत्या करते हैं, असल में ये सब तो कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो विपक्ष पार्टी है, वो विरोधी पार्टी इसका दुष्प्रचार कर रही है।
ये बहुत ही संवेदनशील बात है और देश में जो किसान हैं वो जो देश को एक तरह से अन्नदाता भी कहा जाता है इस देश के लिए, और वो कई बार सही बात है आप किस नज़रिए से देख रहे हैं थोड़ा सा उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये ज़रूर है कि किसान उसने जो अपना अन्न या जो भी उपज है उस उपज को अगर वो ज़मीन के ऊपर डालता है, टमाटर सड़क पर फेंकता है या दूध सड़क पर बहा देता है तो आसान नहीं होता है ये सारा काम करना। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इस लिहाज से देखा जाना चाहिए कि कोई आदमी अपनी जान देने की अगर उस हद तक चला जाए तो वो सामान्य परिस्थितियां नहीं होती हैं, उनकी परिस्थितियों को जरूर समझा जाना चाहिए।
और गणेश प्रसाद हौजदार लिखते हैं कि बीबीसी विशेष में जिसने 6 दिन में काफ़ी कुछ बदल दिया, ये जो हमारे यहाँ कहानी छपी थी मध्य पूर्व का नक्शा और पहली महावारी जैसी शिक्षाप्रद लेख के बारे में पढ़कर अच्छा लगा क्योंकि ये काफ़ी जानकारी मूलक है। और दूसरी बात इन्होंने लिखी है कि इनके मोबाइल पर कहानी दिन भर और नमस्कार भारत नहीं खुलते, इसलिए थोड़ा सा सुनने से वंचित रह जाते हैं।
अच्छा, क्योंकि ये मोबाइल पर नहीं खुल रहा है ऐसी शिकायत अभी तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है। थोड़ा सा उनको अपने मोबाइल फ़ोन पे भी ये देखना चाहिए कि वो ऐप पे सुन रहे हैं या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे उसको खोल करके सुन रहे हैं और सही ब्राउज़र या सही प्लेयर उनके पास है कि नहीं, थोड़ा सा इसको उनको देखना चाहिए।
तो चिट्ठियों का सिलसिला यहीं तक, अब पता बता दें
जी, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003, और अगर ईमेल करना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
जी हाँ, हर हफ्ते हमें आपकी चिट्ठियों का, आपकी राय का इंतज़ार रहता है। हम कई बार आपकी चिट्ठियों को शामिल कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं, अब नहीं कर पाएंगे तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन अगर आपका नाम रेडियो पे आया तो फिर से ज़रूर लिखिएगा, नहीं भी आया तब भी लिखिएगा। बहरहाल, समय हुआ है खेल समाचारों का। इंदु पांडे मेरे सामने बैठी हुई हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है इंदु जी, अब ये बताइए कि क्रिकेट पे बात करेंगी या विंबलडन पे?
क्रिकेट पे।
चलिए तो क्रिकेट पे शुरुआत करते हैं।
सबीना पार्क जमैका में भारत और वेस्टइंडीज अपने 5वें वनडे के लिए आमने सामने हैं और भारत 2-1 से इस सीरीज में आगे है। चौथे वनडे की हैरानी भरी जीत से निश्चित तौर पर वेस्टइंडीज का मनोबल बढ़ा है और अब टीम इस सीरीज को बराबर करने के लिए बेताब होगी। वेस्टइंडीज ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। टीम इंडिया को ICC वनडे रैंकिंग में तीसरा स्थान बनाए रखने के लिए ये सीरीज जीतना जरूरी है। फिलहाल उसके 114 पॉइंट हैं। यदि सीरीज ड्रॉ होती है तो निचली रैंकिंग वाली टीम से सीरीज ड्रॉ होने पर भारत को नुकसान हो सकता है। वनडे का फुल टाइम कैप्टन बनने के बाद विराट की कप्तानी में विदेशी धरती पर टीम इंडिया की ये पहली सीरीज जीत भी होगी। विराट ने अपनी कप्तानी में साल 2013 में जिम्बाब्वे में 5-0 से वनडे सीरीज जीती थी, लेकिन तब वो फुल टाइम कैप्टन नहीं थे। फुल टाइम कप्तान बनने के बाद विराट ने पहली वनडे सीरीज पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ भारत में ही खेली थी, जिसमें इंग्लैंड को 2-1 से हराया था। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज की धरती पर 7 वनडे सीरीज खेली है, जिनमें से 3 में जीत दर्ज की है। भारतीय टीम ने सौरव गांगुली, MS धोनी और सुरेश रैना की कप्तानी में विंडीज में वनडे सीरीज जीती है, लेकिन वो क्लीन स्विप कर पाने में कभी सफल नहीं हुई। इस बार जरूर इसकी उम्मीद थी, लेकिन प्रकृति ने साथ नहीं दिया। जहां तक विंडीज टीम का सवाल है तो उसने सर विविन रिचर्ड्स की कप्तानी में भारत को 1989 में वनडे सीरीज में 5-0 से हराते हुए क्लीन स्विप किया था। उस समय टीम के कप्तान दिलीप वेंगसरकर थे।
विंबलडन का हाल अगर आप बता दें तो लगे हाथों।
जरूर, विंबलडन के तीसरे दिन राफेल नडाल, एंडी मरे, विनस विलियम्स आसान जीत के साथ अगले दौर में पहुंच गए। के निशिकोरी और जोहन्ना कोंटा को तीसरे दौर में पहुंचने के लिए पसीना बहाना पड़ा। मरे ने जर्मनी के डस्टिन ब्राउन को हराकर जीत दर्ज की। हालांकि इस मैच में विजेता मरे से ज्यादा ब्राउन के तेज शॉट्स ने कमेंटेटर्स के साथ दर्शकों को भी हैरान किया।
इंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी खेल समाचार, खेल जगत की खबरें, और अब चलते चलते एक नज़र सुर्खियों पर।
बीबीसी समाचार। इसराइल की यात्रा पर गए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के आखिरी दिन आज उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए थे। समाचार एजेंसी PTI ने चीन के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि हैमबर्ग में G20 देशों के शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत के हिसाब से माहौल अभी सही नहीं है। भारत प्रशासित कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रहे बुरहान वानी की 8 जुलाई को पहली बरसी से पहले पुलिस ने कश्मीर में आज रात 10 बजे से सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है। जापान के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। बीबीसी समाचार।
और कार्यक्रम समाप्त करने से पहले एक क्षमा याचना उन श्रोताओं से जो हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं। आज आवाज साफ नहीं आई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कल भी आवाज साफ नहीं आएगी, हमें क्षमा कीजिएगा। मैं फिलहाल राजेश जोशी आपसे इजाजत चाहता हूं। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया तिलक राज भाटिया ने। नमस्कार।